رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1432 سنہ ہجری کے ماہ ربیع النور کی آج نویں شب ہے، اور دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، باب المدینہ میں جو مدارس المدینہ ہے، ان کے مدنی منوں کا مدنی مذاکرہ ہے.
امیر اہل سنت کی نواسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اگر اس کا مقصد خوشی کا اظہار ہے تو خوشی جلوس کے بغیر بھی منا ہی جا سکتی ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں.
خوشی دل میں بھی منائی جا سکتی ہے، لیکن مقصود خوشی کا اظہار، سوال میں یہ پوچھا ہے نا، تو ہر وہ جائز طریقہ اپنا ہے جس سے خوشی کا اظہار ہو. ہم جیسے اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں، تو گھر میں چار دیواری میں تو نعت خوانی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کو اس سے سب فیض یاب ہوں، تو اس لیے وہ سب کے سامنے کرتے ہیں، پبلک جمع ہوتی ہے، سب کو سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، ذہن بنتا ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، نعت شریف پڑھنے سننے کا شوق بڑھتا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ خوش الہان قاری سے قرآن سنو، عشق الہی بڑھے گا، اور خوش الہان نعت خوان سے نعت شریف سنو تو تمہارا عشق رسول بڑھے گا. اس مفہوم کا قول اعلی حضرت کا بھی موجود ہے. تو اس طرح جلوس جو نکلتا ہے نا، تو اس میں بھی ایک تو لوگوں کو ذوق و شوق بڑھتا ہے، سرکار کی محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے دل میں. اور جو غیر مسلم ہیں وہ جب یہ انداز دیکھتے ہیں تو ان پر بھی ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. تو اس طرح مطلب وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. جیسے چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جشن ولادت کے جلوس میں ایک مدنی منع نے، کیونکہ اپنا تو ایسا ہے نا کہ جلوس کو روک روک کر نیکی کی دعوت بھی دینی ہوتی ہے، تو ایک مدنی منع نے جب جلوس رکا ایک مقام پر تو دعوت دی نیکی کی، تو ایک آدمی جو تھا اس نے بولا مجھے اپنے نگران سے ملا، اس طرح بھائیوں کو بولا، تو نگران کے پاس اس کو حاضر کیا. تو اس نے کہا میں تو کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا اتنا اچھا طریقہ ہے اور اس طرح یہ نیکی کی دعوت اور یہ جلوس، تو آپ مجھے بھی مسلمان کر لو. تو وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش کروں گا اور ان کو بھی مسلمان کروں گا. چنانچہ وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو بھی سمجھا بجھا کر اسلام میں داخل کر لیا. تو اس طرح جلوس کو دیکھ کر ایک بہت شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اسلام کی. اور بانی اسلام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دل پر نقش ہوتی ہے غیر مسلموں کے. یہ دنیا میں کسی کا کوئی پیشوا ایسا نہیں جس کے لیے اتنے بڑے جلوس نکلتے ہو، اتنا بڑا جشن منایا جاتا ہو. یہ تاریخ میں بس یہ ہمارا حصہ ہے الحمدللہ، اور ہمارا عاشقان جو عاشقان رسول ہیں ان کا حصہ ہی ہے کہ یہ خوب جشن ولادت کی دھوم مچاتے ہیں کہ غیر مسلموں کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے اور سرکار کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور جن کے نصیب میں ہوتا وہ اسلام کو قبول بھی کر لیتا ہے. تو اس لیے وہ جو طریقہ جائز ہو اس طریقے سے इजहार अपनी खुशी का करना चाहिए।
सल्लू अलल हबीब। प्यारे बापा जान, कहते हैं कि दुआ तकदीर को बदल देती है, तो मन्नी मुन्नों को क्या क्या दुआ करनी चाहिए?
हदीस पाक में अद्दुआ युरुद्दुल कदा, दुआ तकदीर को बदल देती है। और दुआ दरअसल खुद इबादत है, अद्दुआ मुखुल इबादत है, दुआ इबादत का मगज है, बहुत अजीम शान इबादत है। तो इसलिए दुआ जब भी मांगे तो सवाब की नीयत हो कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है, उदउनी अस्तजीब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। तो इसलिए दुआ तो करनी चाहिए। कबूल करने से मुराद ये कि हमने जो मांगा वही मिल गया तो ही कबूल हो, ये जरूरी नहीं। अब जैसे कि आपने दुआ मांगी कि मेरा हाफिजा मजबूत हो जाए और मैं रोज का एक पारा हिफ्ज कर लूं, और आपको नहीं होता हिफ्ज, तो आप ये नहीं समझो कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ की कबूलियत की सूरतें ना, तीन सूरतें हैं। एक तो ये कि जो दुआ आपने मांगी जैसा मांगा वैसा हो गया, हम लोग इसी को दुआ की कबूलियत समझते हैं, हालांकि यह है दुआ की कबूलियत, लेकिन इसके अलावा भी है। अब ये जो मांगा वो नहीं मिला, बल्कि जो मुसीबत आने वाली थी वो टल गई, ये भी होता है। मिसाल के तौर पर कि आपने या दुआ मांगी, कुछ भी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह मुझे नेक बना दे, मुझे बाअमल हाफिज कुरान और आलिम बाअमल बना दे, ये दुआएं मांगी, ठीक है ना, और यहां से गए और घर खैरियत से पहुंच गए। हालांकि अगर ये दुआ ना मांगते तो तकदीर में ये था कि ये जब अपने घर के लिए सुजुकी से या गाड़ी से उतरेगा तो इसका पांव फिसलेगा और ये गिरेगा, इसका सर फट जाएगा और टांके आएंगे सर पे। अब दुआ मांग ली थी इसलिए वो गिरा नहीं, टांके नहीं आए सर में, फटा नहीं, पर इसको पता भी नहीं चला कि ये मुसीबत आनी थी जो टल गई। तो यूं दुआ से आने वाली मुसीबतें टलती हैं, तो दुआ तो मांगते ही रहनी चाहिए। तो अब मदनी मुन्नों को क्या क्या दुआएं करनी चाहिए? एक तो ये कि अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, बेहिसाब मेरी मगफिरत करे, मैं बाअमल कुरान का हाफिज बनूं और मुखलिस आलिम दीन बनूं। इखलास की दुआ जरूर मांगे, इखलास बने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए अमल करना, जिसमें गैर यानी अल्लाह के सिवा किसी और की ऐसी रिजा ना हो जिसमें अल्लाह की रिजा शामिल नहीं। हाँ, अल्लाह राजी हो और साथ में माँ बाप भी राजी हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन असल मकसद अल्लाह राजी हो इसलिए मैं हिफ्ज करूंगा, मुझे सब हाफिज साहब बोलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे सब मुबारकबाद देंगे, मेरी इज्जत करेंगे, लोग मेरे को बोलेंगे दुआ में याद रखना हाफिज जी। तो इस तरह की नीयतें, ये सब खराब नीयतें, ऐसी नीयत नहीं, बल्कि बस अल्लाह राजी है, किसी को पता चले ना चले, अपने मुंह से बोलना भी नहीं है कि मैं हाफिज हूं, या अपने नाम के आगे लोग लिखते हैं हाफिज फुला, इसकी भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो तो ठीक है, आदमी बताए, बिना जरूरत ये लोग बोलते रहते हैं मैं हाफिज, नाम के साथ हाफिज लगाते हैं, साथ में बोलेंगे हाफिज फुला, तो ये अपनी इज्जत अपने मुंह से करवाने वाली बात है। तो इसकी बिना जरूरत इसको ना जाहिर किया जाए कि आप हाफिज हैं, या आपने मतलब इल्म दीन हासिल किया है, या आप इन्हें जरूरत के वक्त जाहिर करें, बिला जरूरत जाहिर ना करें। तो इस तरह इखलास की दुआ मांगे, अपने माँ बाप को दुआ में हर दुआ में याद रखना चाहिए कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को बेहिसाब बख्श दे, अगर ये बीमार हो तो या अल्लाह मेरे माँ बाप को शिफा दे दे, हमारी हलाल रोजी में बरकत दे कि हम किसी के मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे मोहताज रहे। इस तरह अच्छी अच्छी दुआएं, या अल्लाह मुझे बाअमल मुबल्लिग दावत इस्लामी बना दे, मैं दर्स दिया करूं, मैं मदनी इनामात पर अमल करता रहूं, अभी से नियत कर लेंगे बड़ा हो जाऊंगा तो मदनी काफिले में सफर भी करूं, इस तरह की अच्छी अच्छी दुआएं आप मांगते रहे, इंशाअल्लाह इनका भी आपको फायदा मिलेगा। कि नाबालिग का ये फायदा है कि नाबालिग को जो नेकियां करता है ना, ये नेकियां उसकी शुमार की जाती हैं, और नेकियों का उसको अजर मिलता है। तो इसलिए आपको मौका अच्छा जो नाबालिग मदनी मुन्ने बस नेकियां किए जाओ, दुआ करना बहुत बड़ी नेकी है। पहले कबूलियत का हम पर इजहार हो या ना हो, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, खुलूस होगा, अल्लाह के लिए दुआ करेंगे तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लम। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ल खुसूसी सलाम भी इशारों में सवाल करेंगे।
ये हमारे यहाँ खुसूसी इस्लामी भाई, ये नाजरीन को बता भी दिया जाए ना कि इनको ये गूंगे बेरे जो होते हैं, इसको डीफ बोलते हैं ना, डीफ डेफ डेफ, तो ये डेफ इस्लामी भाई अगर इनको डेफ बोलो तो बुरा लगता है, तो नाबीना को भी अंधा बोलो तो बुरा तो लगता ही है ना, तो इनको गूंगा बेरा बोलो तो ये जरा वो बेचारे वो बुरा मनाते हैं, तो इनको हमने फिर खुसूसी का नाम दे दिया इस्लामी भाइयों ने, खुसूसी इस्लामी भाई हम लोग हैं उमूमी, ये हमसे भी बड़े खुसूसी, ठीक है ना। तो ये इसलिए अब ये खुसूसी इस्लामी भाई अपनी खुसूसी जबान में सवाल करेंगे और उमूमी इस्लामी भाई इसका इसकी वजाहत करेगा करेंगे
इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
प्यारे बापा जान की बारगाह में सवाल अर्ज है, मैं गुंगा बहरा, मेरा नाम फैजान अत्तारी है, मेरा सवाल ये है कि हम काम तो बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमें एक माह के बाद जब उजरत मिलती है तो इस तरह देते हैं जैसे किसी फकीर को दी जाती है, ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अता फरमाएं, आप इनको सबको समझाएं, जजाक अल्लाह खैरा।
हाँ, मैं सबको समझाने कहाँ जाऊंगा, ये समझ जाए ना सब समझ जाएंगे। चलिए, असल होता है मतलब एहसास से कमतरी की वजह से सारे ही मुआशरे को हम जालिम थोड़ी करार देंगे कि इन पर कोई रहम ही नहीं खाता, ऐसा नहीं है। देखो, रहम खाने वालों ने तो इनको यहां जमा करके बिठाया है नहर इतने सारों को, और इनको इज्जत का मकाम दिया ना उमूमी के बजाय खुसूसी, खुद उमूमी हो गए इनको खुसूसी बना दिया, तो ये इनका एहसास है कमतरी, इनको ऐसा लगता है कि ये हम पर एहसान करते हैं, इस तरह ये हमको तनख्वाह देते हैं। कोई कोई जालिम सेठ होता होगा ऐसा, तो ये उमूमी को भी नहीं बख्शता, आम जो नॉर्मल ईसाई भाई होते हैं उनके साथ भी बुरा रवैया करने वाले सेठों की कमी नहीं है इस माशरे में, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको मतलब जिस तरह भिखारी को भीख देते हैं इस तरह इनको ये तनख्वाह देते हो, ये इन लोगों का अपना गैस है, अपना एहसास है ये, और ये एकाद के साथ हुआ होगा ये भी मुमकिन है, फिर उसने इशारों से अपनी बिरादरी को बताया होगा इशारों में, यूं करके यूं ये करते होंगे इस तरह, और समझाते होंगे कि यार ये बुरे लोग हैं, मेरे को यूं करके भिखारी समझता है मेरा सेठ और मेरे को यूं देता है, तो यूं ये नादानी में इशारों में गीबतें करते होंगे अपने सेठ की, और ये गीबतें फैल गई होंगी इनमें, तो इसलिए अब इनका जहन बन गया होगा कि ये हमको भिखारी की तरह तनख्वाह देते हैं। इन सबको पूछोगे ना तो इनमें से निकलेंगे ऐसे सेठ भी इनके, ये वो शफकत करते होंगे, प्यार करते होंगे, औलाद की तरह रखा होगा। अब जिसके साथ सेठ बदसुलूकी करता है वो अपने अंदाज पर भी गौर करे, क्योंकि इनकी अक्सरियत जो है ना, जैसे आप मदनी माहौल में आ गए तो फर्क तो पड़ा है। एक आपने सुना ना, वो बाप ने जो तासुरा दिया कि मेरा बेटा हमको बहुत सताता था, अब दाऊद इस्लामी वालों ने इसको सही कर दिया है। इस तरह मैंने भी गूंगे देखे, मैंने भी देखे अपने बचपन में लड़कपन में, और मुझ पर गूंगों का तासुर इनके तमाशे देखकर जिसको आप सीन पार्ट बोलते हैं, ये देखकर ये कायम हुआ कि गूंगा बड़ा शरीर होता है उमूमन। इतनी इनकी शरारतें मैंने देखी हैं, उतनी चालाकियां इन्हें के बराबर इशारों में ये रंगी नंगी गालियां देते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो इस तरह का कोई इन लोगों का फ्यूचर होगा, क्या कहते पास्ट, माजी, और ऐसे हाल में इन्होंने नौकरी की होगी और अपनी इन हरकतों के बाइस अपने सेठ को बदजन कर दिया होगा। फिर इन्होंने तनख्वाह बढ़ाने या वो जरूरत से ज्यादा मांगने की कोशिश की होगी कभी, तो सेठ ने उसको जरा वो रोब झाड़कर सकते हैं, ये लेना दफा और चल भाग। तो ये समझो हमको भिखारी की तरह देता है। इन्हें कोई भी ऐसा वाक्य होता है इसका मतलब पस मंजर कुछ होता है, तो इनकी कुछ कोताहियों के बाइस हो सकता है इनके साथ ऐसा हुआ हो और ये समझ बैठे होंगे सेठ हमको हकीर समझते हैं, वरना ऐसा हकीकत में नहीं होगा। तो इनको चाहिए कि अपनी इसलाह कर लें, बिलफर्ज फिर भी जुल्म होता है, सब्र करें और सवाब कमाएं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब
भाई। खुसूसी इस्लामी भाई भी जश्न विलादत मनाएंगे ना? हाँ, कैसे मनाएंगे?
अच्छा, पहले ये खुसूसी इस्लामी भाइयों को जो मैंने जवाब दिया, इनमें से किसी को मेरी बात अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, समझ में आई है तो भी इशारों में खुशखबरी दे दो कि वाकई हम लोगों का भी कसूर होता है, हर सेट ऐसा नहीं होता, ये सारे सेट उमूमी, हम उमूमी, हमारी बिरादरी उमूमी, यार ये सबको बदनाम तो नहीं करो ना कि भीख की तरह देते हैं। तो ये इन गूंगे पैरों से पूछ लो कि मैं कहता हूँ दुरुस्त।
हाँ, दाई दाई दाई
आज जो चो याद चुन जाएंगे
यूं।
सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो इनके समझ में आ गया क्या
मदीना?
इनकी समझ में कैसा आ रहा बाबा? इनके तो अब घर वालों की समझ में आ गई है दावत इस्लामी, कि ये दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे इस तबके को संभाल रही है, हमारे बच्चों को संभाल रही है। और जैसे कि एक वो एक है, वो अच्छे तासुरात दिए किसी ने, डॉक्टर साहब है ना, उनके कोई तासुरात आए बाबा, वो सुनते हैं।
गुजरांवाला से डॉक्टर अनवार अहमद एजाज बोल रहा हूँ जी। हुजूर, खुदा ताला आपको सदा सलामत रखे। हुजूर, आपकी तबीयत कैसी है? हुजूर, यहाँ मैं पंजाब गवर्नमेंट के जेर इंतजाम चलने वाले गवर्नमेंट डेफ स्कूल में बतौर सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर अपने फ़राइज़ मंसूबे सर अंजाम दे रहा हूँ। हुजूर, मैंने एक दफ़ा अखबार में खसूसी बच्चों के लिए दावत इस्लामी के मिशन की बाबत पढ़ा था। मैंने गुजरांवाला में जो फैजान मदीना मरकज है वहाँ जुमेरात की शाम को जाकर मकामी खतीब जो थे उनका जब खुतबा सुना तो एक किनारे में ना उस्मान अतारी साहब को देखा कि वो इशारों की मदद से इन बच्चों को जो खुतबा दिया जा रहा उसे समझा रहे हैं। मैंने जो अपनी आंखों से मंजर देखा, इन बच्चों को अपने गुनाहों पे तौबा करते रोते देखा, रिकतारी होते देखा, हुजूर मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा था। जब ये खुतबा वगैरह मुकम्मल हुआ तो मैंने उन्हें कहा आपने ये सब कहाँ से सीखा है? तो वो बाकायदा बोल कर कहने लगे जी ये मैंने बाबुल मदीना कराची से ये कोर्स किया हुआ। मैंने कहा आलमी मरकज बाबुल मदीना कराची से ये कोर्स किया। तो मैंने कहा कि ये बड़ा इल्मी और फिक्री अंदाज है, और क्या ये ऐसा हो सकता है कि कोई और आदमी भी सीख सके? तो उन्होंने फिर बताया कि ये तो जी कराची में ही होता है। सरकार, मैं असल में जो सवाल चाहता हूँ ना वो ये है कि मेरे एक मेरी मालूमात के मुताबिक किसी शख्स ने एक मतलब उसके 3-4-5 बच्चे होंगे तो एक सूसी बच्चा पैदा होने पर उसने अपनी कई बच्चों की माँ को तलाक दे दी। इसमें उसकी माँ का क्या कसूर है?
बहुत अच्छे तासुरात इन्होंने दिए, मगर आखिर में जो आपने सुना ना कितनी दर्दनाक कहानी सुनाई इन्होंने, कि बच्चा खसूसी बच्चा पैदा हुआ गूंगा बेरा तो उस नादान शख्स ने उसकी माँ को बेचारी को तलाक दे दी। कितना जुल्म किया, یعنی کتنا غلط اقدام کیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس میں بیچاری کا اس کی ماں کو بھی تو صدمہ تو ہوا ہوگا کہ جس کے بھی گھر میں اس طرح کا بچہ آئے گا تو اس کو خوشی تو ہونی نہیں ہے, اس کو رنج ہوگا کہ اب کیا ہوگا, کیسے سنبھالیں گے اس کو. اور پھر اوپر سے طلاق دے دینا, اس کے اوپر کتنے صدمے کے پہاڑ توڑے ہوں گے, کیا کیا بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے بیچاری کو لگ گئی ہوں گی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ خصوصی دے یا عمومی دے, جیسا دے, اپاہج دے, تندرست دے, اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم گنگے بہرے اسلام بھائی جب بیمار ہوتے ہیں تو چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, وہ ہم ان سے اچھا سلوک نہیں برتتے, حسن سلوک سے پیش نہیں آتے, ایسا کیوں ہے؟
ہاں ڈاکٹروں جواب دو, ان کو بھی کوئی ایک آدھ ڈاکٹر ٹکر گیا ہوگا, پھر وہ سارے ڈاکٹر کوئی سمجھتے ہوں گے کہ سب ڈاکٹر ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, کہ جس طرح مطلب یہ لوگ سلوک کرتے ہیں مریضوں کے ساتھ, خصوصی تو کوئی کوئی مریض ہوتا ہے باقی عمومی ہی ہوتے ہیں, تو یہ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے جو بد اخلاق ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہاں اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, مگر پرائیویٹ کلینک میں کسی ڈاکٹر نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہو یہ مشکل ہے. اگر انہوں نے پیسے دکھانا, یہ کہا ہو کہ میں غریب آدمی ہوں اور کیا ہوگا کہ میں پیسے نہیں دے سکتا, تو پھر ہو سکتا ہے وہ مطلب بےچارا ہو یہ حریص پیسوں کا, تو اس لیے اس نے کوئی تحقیر کی ہو تو کہہ نہیں سکتے, مگر سارے ایسا نہیں کرتے. اچھے ڈاکٹر بھی پڑے ہوتے ہیں, خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ وہ غریبوں کا علاج مفت کرتے ہیں. چند ڈاکٹر مل کر بھی ایسی ترکیبیں کرتے ہیں, پیسے نکالتے ہیں کہ یار اپنے کو ان کا بجٹ ہوتا ہے باقاعدہ, بھائی اتنے غریبوں کا ہر مہینے یا ہر سال علاج کرنا ہے اپنے کو, ایسا بھی بےچارے کرتے ہیں, تو سب برے نہیں ہوتے ان میں. تو یہ ان کو بھی وہ سیٹھ والا جو میں نے عرض کیا نا, وہی جواب ان کے لیے کہ اگر ایک آدھ ڈاکٹر ٹکر بھی گیا تو یار سب کو بولتے کیوں کہ فلاں ڈاکٹر ایسا فلاں ڈاکٹر ایسا اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, تو پھر غیبتوں کے دروازے کھولے آپ نے. جیسے توبہ کرنی چاہیے, اگر غیبت واقعی کی ہے تو توبہ کریں, اور آئندہ کوئی ایسی صورت پیش آ رہا تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, کہ پھر یوں دوسروں کا دوسرے بھی ڈسارٹ ہوتے ہیں, خام آگاہ کا دل پہ لے لیتے ہیں کہ یار ڈاکٹر برے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, ہم گونگے بہرے اس لیے. تو یہ احساس محرومی اور احساس کمتری میں گرتے چلے جاتے ہیں, یہ ٹینشن کی وجہ سے ان کی ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں رہتی ہیں. تو ایسا نہ سوچے کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا, ایسا ضروری نہیں کہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ کے پیچھے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, شاید وہ بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر اکبر میمن اتاری ہے, میرا تعلق حیدرآباد سے ہے, اور میں وہاں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں جس کے ساتھ ایک ہاسپٹل بھی منسلک ہے. بابا جانی سب سے پہلے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ آج آپ نے ہمیں اپنا آئینہ دکھایا ہے اور اس میں جو ہماری شکل دکھائی ہے وہ 100% صحیح ہے کہ واقعی ہم سے بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں. ایک بات تو بالکل, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ آئندہ اس قسم کی غلطی خطائیں ہم سے نہ ہوں.
ماشاءاللہ توبہ بھی کر لیجیے, سب جن کی ہوئی ہے یہ جو ہے نا کہ اپنا اظہار نہیں کرے جو تو یہ چپکے توبہ بھی کر لیجیے, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے.
آپ نے بہت سے مدنی ماحول مدنی پھول عطا فرمائے ہیں نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں. بابا جانی واقعی صحیح ہے کہ ہم ہائیں بائیں شائیں تائیں کر کے اپنے خاموں خاں کے جواز پیدا کر لیتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوتا ہے اس لیے ہم ایسے کر لیتے ہیں. پھر بھی ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انڈوسکوپی, جس میں اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یا تو ان کی اٹینڈنٹ ہوتی ہیں یا ہم اپنے ساتھ کوئی سٹاف نرس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اپنی اور ان کی بھی حفاظت ہو سکے. اب اور دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس وقت بھی ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے خواتین ہوتی ہیں اور ان کو ہم نے پڑھانا بھی ہوتا ہے، ان کو ٹیچ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بات. دوسرے نمبر پر وہ خواتین جو کہ ہمارے پاس آتی ہیں علاج کی غرض سے، ان کے ساتھ بھی خواتین ہوتی ہیں. تو ایسے ماحول میں ہمارے کوئی مدنی پھول ایسے عطا فرما دیجئے کہ ہم سے کم سے کم گناہ ہو سکیں اور ہم ان گناہوں سے بچ سکیں. جزاک اللہ فی ذلک.
کم سے کم گناہوں ہیں نا، تھوڑی بہت کی گنجائش نکال دوں میں آپ کو.
کوشش کیجیے،
ہنسو مت، توبہ کرو بھائی. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ماشاءاللہ بڑے آپ نے دیکھا، خدا ترس ڈاکٹر ہیں، خوف خدا والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا نا. اور میں نے جو مدنی پھول پیش کیے اس میں میری حوصلہ افزائی کی انہوں نے، دل جوئی فرمائی. اب یہ کہ دیکھیے، عورت کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے علاج اس کا ممکن ہے، یعنی ایسی عورت اس کو اویلیبل ہے، میسر ہے، تب تو اس کو عورت سے علاج کروانا ہے، مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اب یہ مجبور ہو گئی کہ کوئی ایسی لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں ہے جو اس کا علاج کر سکے، یا اس نے کروایا تو علاج ہو نہیں پایا، اب مرد کے بغیر چارہ نہیں ہے ڈاکٹر کے بغیر. اب وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہے تو وہ بے شک رجوع کرے. ڈاکٹر کے لیے ہم نے کہیں یہ جزئیہ کوئی پڑھا نہیں کہ ڈاکٹر بھی سارا اس کا انٹرویو لیا کہ کیا لیڈی ڈاکٹروں سے تم علاج کروا چکی ہو، پہلے لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ پھر ہمارے پاس آنا، ایسا کوئی میں نے پڑھا نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس کی تہ میں جائے. ٹھیک ہے نا، اب ڈاکٹر مریضہ کا علاج کر سکتا ہے، ضرورتاً مریضہ کے مرض کے حصے کو دیکھ سکتا ہے، ضرورتاً مریضہ کے مرض کے حصے کو چھو بھی سکتا ہے، نہ صرف دیکھنے کی نہیں چھونے کی بھی اجازت ہے، چاہے وہ حصہ کوئی سا بھی ہو، ضرورت. اب یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ حصہ کھولے گا تو گناہگار ہوگا، ضرورت سے زیادہ حصے پر یہ چھوئے گا یا بلا ضرورت چھوئے گا تو گناہگار ہوگا. تو اب اس کو یہ ہم نے یعنی کہ شریعت نے ڈاکٹر کے لیے یہ ایک فارمولہ دے دیا ہے، اب اس فارمولے پر آپ کو عمل کرنا ہے. اب کتنا بڑھاتے ہو اس میں، کوئی بڑھاتا ہے یہ اس کا خود ذمہ دار ہے، مریض کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو یوں کی ضرورت ہوگی. جیسے نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے عام طور پہ ڈاکٹر کان میں اسٹیتھوسکوپ تو یہ لگاتے ہی ہیں، گلے میں بھی رکھتے ہیں تاکہ کوئی ان کو سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب ہے، جب یہ ہاسپٹل میں ہاؤس جاب وغیرہ کر رہے ہوتے تب بھی، اور ویسے بھی یہ ڈاکٹر کا علامتی نشان ہے، تو یہ اسٹیتھوسکوپ رکھتے ہیں. اب کیا کریں گے، مریض کو اس کی ضرورت بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن وہ کان میں پہنے گا، ٹک ٹک کر کے اس کو دیکھے گا. اب بجا نہیں بجا پرواہ نہیں، کیونکہ مریض کو نفسیاتی طور پر اس کو رام کرنا ہے. اب یہ اس کے سینے پر، چیسٹ پر، کمر پہ تھوڑا ادھر بجائے گا، تھوڑا ادھر ٹک ٹک کرے گا، تو اس سے کیا مریض کیا سمجھے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح دیکھا میرے کو، اب پتا ہے اس کو دینا کیا ہے، اس کو دینا کیا یہ پہلے سے پتا ہے، لیکن اس کو دیکھے گا، دو چار سوالات کرے گا تاکہ مریض کو اطمینان ہو. تو اگر یہ میل یعنی ڈاکٹر میل پیشنٹ کے ساتھ ایسا کرتا ہے نفسیاتی طور پر اس کو کہ اس کا علاج بہتر ہو جائے، تب تو کوئی بظاہر حرج لگتی نہیں ہے، جس میں جبکہ دھوکہ نہ ہو، اس میں کوئی دھوکہ شامل نہیں ہونا چاہیے، خالی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بے شک وہ اس کو دیکھے سب کچھ کرے اور وہ جو دوا پہلے سے ذہن میں تھی وہی دے دے. اب اس کے پاس آ گیا میل، وہ فیمیل پیشنٹ، عورت مریض آ گئی، اب اس کو یہ چیسٹ پر رکھ رہا ہے اسٹیتھوسکوپ، خالی نفسیات اثر ڈالنے کے لیے اس کی پیٹھ پر ٹھک ٹھک بجا رہا ہے، تو پیٹ پر یوں انگلیاں بجا کر چیک کر رہا ہے، اور پتا کہ اس کو خالی نفسیاتی اثر ڈال رہا ہوں میں، کرنا کچھ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں یہ 440 واٹ خطرے کا نشان لگا ہوا ہے، وہ نہیں ان ہڈیاں اور بیچ میں کھوپڑی ہوتی تھی، یہاں یہ لگا ہوا ہے. یہاں اپنے مریضہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے جب تک حاجت نہیں ہے، हाँ इसका पीलिया चेक करना है ज्वाइंटिस, और इसकी आंखों को देखना जरूरत है कि ये पीली आंखें हैं कि नहीं इसकी, तब तो इजाजत की सूरत हुई। ये आंखों ही का डॉक्टर, आंखें चेक करनी है तब देखेगा, वरना अगर जरूरत नहीं आंखें देखने की तो अब आंखों की तरफ नहीं देखना, इसने नजर की हिफाजत करनी, इसके बगैर जरूरत इसके लिबास को भी नहीं देखना है, ये भी खतरे की घंटी है। तो यूं बच बचा कर मतलब देने के वो है बहुत मुश्किल। तो ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई डॉक्टर ये चाहे कि वो बोर्ड लगा दे कि यहां सिर्फ मर्दों का इलाज किया जाता है, क्या मुश्किल है इसमें। आप पर वाजिब तो नहीं कि औरतों का इलाज करें ही करें, अल्लाह रोजी देने वाला है। बाद ऐसे वो हमने तो हेयर कटर भी पाए हैं ऐसे, कोई बात हम दाढ़ी नहीं मुंडेंगे, खाली बाल बनाएंगे, दाढ़ी का खत करेंगे, मुंडेंगे नहीं, दुकान उनकी भी तो चली जाती होगी ना, पेट उनका भी भर जाता होगा। तो अगर कोई डॉक्टर ये बोर्ड लगा दे के, जैसे हम ये सवाल जवाब की पट्टी चलाते सलाइड जिसको आप लोग बोलते हो, तो उस पर तो लिखा होता कि इस टाइम मैंने रब्ता ना करें, हालांकि कोई भी चैनल नहीं होगा जो औरतों में इंटरेस्टेड ना हो, वो तो स्क्रीन पर औरतें लाता है इसीलिए, और जवान लाता और बना सजा कर लाता है। अगर कोई मतलब पर्दे का भी दावा करता है तो वो धोखा देता है, ऐसे खूबसूरत बुरके लाता है कि देखने वाली बिचारियां भोली भालियां जो होती इनको फैशन का पता चलता है कि यूं भी हो सकता है। तो इस तरह मतलब ये कि कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जो इस्लामी बहनों पर या औरतों पर पाबंदी डालता हो। एक ये वाहिद चैनल है जो शरीयत के मुताबिक काम करता है, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको सवाब चाहिए, तो ये मतलब इससे बचता है। तो आप भी यानी कि हम भी औरतों से बचते हैं ना, सलाइड चलाते कि आप तकलीफ मत करो, यानी कि आवाज की सूरत में हम आपकी कॉल नहीं मतलब यानी कि चलाएंगे। यूं डॉक्टर साहिबान भी चाहें अपने आप को बनना, यह है कि मैं आपको आप बच नहीं सकते, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत यानी कि दुश्वार गुजार जीना है। इस पर आप कदम रखोगे तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, रूहानियत तो पा ही नहीं सकते, बहुत यानी कि दूर दूर तक मुझे इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्या आप बोलो हम औरतों का इलाज भी करें, हम मेल नर्स भी रखें और बच भी जाएं, इसकी मिसाल तो शायद मैं यूं दूं कि एक बार एक वजीर साहब ने मुझसे कहा था, वो ऐसे कि गुनाह बहुत हो जाते हैं, बड़े मसाइल हैं और कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। तो मैंने कहा आप गंदे गटर में डुबकियां मारकर पूछते हो कि मेरा न कपड़ा ना पाको ना बदन ना पाको, ये ऐसा नुस्खा तो मेरे पास नहीं है। मौजूदा सियासत तो गंदी छी, इसमें अगर कोई डुबकी मारे और बोले कि मैं गुनाह से ना बचूं तो ये इसका मेरे पास कोई ऐसा पानी नहीं है कि मैं तुमको पाक कर सकूं। आपको मैं जो कहना चाहता हूँ सियासतदान भी समझते हैं, गलत बात थोड़ी कहता हूँ।
भाई एक डॉक्टर ने तो बाबा पैगाम भेज दिया मुझे, इंशाअल्लाह मैं सिर्फ इस्लामी भाइयों का ही इलाज करूंगा।
और नर्सें हड़ताल ना कर दे, नर्सों की बारी आएगी कि हमारी रोजियों पे लात मारता है, तो भाई तो तुमको कमाने का किसने कहा है, बाप काय के लिए, बच्चों का अब्बू काय के लिए, क्या वो औरतों की कमाई खाते हैं, इसे मर्द है, बच्चे वो पालेंगे, तुम कमाओगी, छोड़ो ना चादर और चार दीवारी का। तो दोस्तों हमें कुरान पाक ने दिया है, तो देखो कुरान पाक क्या कहता है। मैं मुसलमानों से बात करता हूं, कोई अगर गैर मुस्लिमा अगर कुकू करने लगे तो उससे मेरा कोई खिताब नहीं है, अभी मुसलमानों से। चुनाचे पारा 22 सूरतुल अहजाब आयत नंबर 33 में इरशाद होता है, पारा 22 सूरतुल अहजाब आयत नंबर 33। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى। तर्जमा ए कंजुल ईमान, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। तो देखा आपने औरत के लिए चादर और चार दीवारी का हुक्म, किसी आम शख्स का नहीं, आम मौलवी या इमाम या आलिम का नहीं, बल्कि हम सबके पालने वाले रब मुस्तफा जल्ला जलालहू का है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल ये कहे मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, और अगर सुन रही हैं तो नाजिरात भी सुने कि आप मेरी बातों को बुरा मना ना मनाएं, मैं तो कुरान की बात करता हूं, हदीस की बात करता हूं, मुझे क्या तकलीफ है। आप अगर बेपर्दा करती हो तो मुझे क्या तकलीफ है। आप बोलो कि मैं बदनिगाही में पड़ जाता हूं औरतों की, तो अब तो मुझे ये भी तकलीफ, इस तकलीफ का भी चांस न होने के बराबर है। मैं तो रहता है चार दीवारी में हूं, अब इस वक्त मैं फैजान मदीना में हूं कुछ दिन से, तो क्या यहां भी मेरा मखसूस एरिया है। आप यहां आवाम इस वक्त बैठे हैं, मेरे लिए नो गो एरिया है, मैं आपके साथ आकर नहीं बैठ सकता। मैं तरसता हूं कि मैं आपके साथ आकर बैठूं, नमाजें पढ़ूं आपके साथ, मेरे लिए नो गो एरिया है। लेकिन वो दहशत गर्दी की वजह से वो इस तरह भाई मुझे यहां नहीं जाने देते कि खतरा आपकी जान को, मैं भी समझता हूं इस बात को। तो ये क्या, यहां हमारे इस्लाई बहने तो आती ही नहीं है, अंदर में कहा आती है इस्लाई बहने, ठीक है ना। अच्छा, तो यूं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इस्लामी बहने या औरतों से बदनिगाही का चांस ना होने के बराबर है। घर में भी जाहिर है कि मेरे घर में भी महारिम है, और इस मामले में मैं बहुत यानी कि सख्त अपने लिए अपने ऊपर सख्तियां डाली हुई हैं। मैं अभी तक, मेरी दो बहू हैं, मैं अभी तक इनके साथ आमने सामने नहीं हुआ, अभी तक ना मेरी कोई इनसे फ्रेंडशिप है, ना कोई टेलीफोन पर इनसे रबते, हालांकि मैं दादा बन गया हूं। ये पोती भी मेरी नारे लगाने के लिए आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी अम्मी से कभी मतलब मेरा वास्ता नहीं पड़ता, फोन पर भी इक्का दुक्का, कभी तबीयत बीमार हो गई पूछ लिया, बस कोई मतलब यानी कि अगर ये मेरी दोनों बहुएं इस्लामी बहनों के साथ बैठ जाए बिलफर्ज, तो मैं नहीं पहचान सकता कि ये मेरी बहू है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं है, मैंने अपने ऊपर ये पर्दे डाले हुए, तब मैं क्या बाजारों में जाकर इस्लामी बहनों को ताड़ूंगा। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरा नफ्स जवान है, शैतान रुए रुए पर हावी है, जी मेरा भी चाहता है इन मानों कर गुनाह करने को, लज्जतें हासिल करने को इन गुनाहों की, तो मैंने दबाया हुआ है, नहीं नहीं मारूंगा, चुप, जहन्नम में जलने का मुझ में बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं ये बातें, तो मेरे लिए मतलब घर में भी इसका चांस नहीं, क्योंकि और ये घर में मेरी बहुएं हैं भी नहीं, वो अपने अपने घरों पर अलग इनको इनकी तरकीब है मकानात की, कभी इनका आना होता तो मेरी गैर हाजिरी में इनका आना हो, अगर आना हो भी तो दूसरे कमरे मौजूद हैं उनमें अपने हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बचत है। सुसर से हालांकि बहू का पर्दा नहीं है, हुक्म शरीयत बता दूं, सुसर से बहू का पर्दा नहीं है, अलबत्ता बेहतर यह कि पर्दा रखा जाए फी जमाना, खासकर कि कई सुसर जो पुर खतर होते हैं हाथ मार देते, लेकिन हमारे यहां तो भाभी और देवर का पर्दा भी तकरीबन उठ गया, जो कि हराम है बेपर्दगी देवर भाभी की, लेकिन आजकल बेपर्दगी बेतकल्लुफी है देवर भाभी, देवर तो छोटा भाई होता है, ऐसी बेतकल्लुफी करते हैं ये लोग माजल्ला, तो इसलिए इनका इनसे बचना जरूरी है, देवर भाभी को भी पर्दा करना होगा। तो ये पर्दे के बारे में सवाल जवाबी किताब जो है ये जरूर आप पढ़ लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। तो एक डॉक्टर साहब ने ये इत्तला की कि मैं सिर्फ मर्दों का इलाज करूंगा, मगर एक ही आगे बढ़ा, बाकी सबको पैसे चाहिए, हालांकि इनके पास मरीज इतने आते होंगे कि संभाल नहीं सकते होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल, ये बहुत बहुत मुश्किल है, तो बच नहीं सकते फिर, थोड़े थोड़े गुना की इन्होंने इजाजत मांगी है, तो जाहिर है मैं तो आधे गुना की भी इजाजत देने से रहा, मैं इजाजत दूं तो भी इजाजत वो काउंट नहीं होगी, बल्कि गुना में ही मेरा शुमूल हो जाएगा कि मैंने गुना की इजाजत दे दी। तो इसलिए रूहानियत चाहिए, बरकतें चाहिए, तो देख ले मैंने आपको फार्मूला एक मेरे जहन में बैठे बैठे आ गया, वो अर्ज कर दिया, पहले से मेरा भी जहन नहीं था कि मैं ऐसा आपको फार्मूला बताऊंगा, लेकिन आ गया कि कोई अगर यूं करना चाहे तो उसके लिए गुंजाइश है, भूखा नहीं मरेगा।
एक रेस्टोरेंट खुला था बाबा
जी,
उसमें ये बोर्ड लगा था ओनली फॉर जेंट्स। एक तो होता है ना कि औरतों का दाखिला मना है, तो थोड़ा मौजदब अंदाज इन्होंने यू इख्तियार किया कि औरतों को बुरा ना लगे, ओनली फॉर जेंट्स। वह कई ऐसी जगह होती है जहां लिखा होता है कि ओनली फॉर लेडीज, तो मर्दों को तो बुरा नहीं लगता। हम बस में भी चढ़ते हैं तो वहां जहां औरतों का पोर्शन अलग है, मर्दों का पोर्शन अलग होता है।
होता था,
था। अभी है थोड़ा बहुत है
आपके शहर में होगा बाबुल मदीना में, बाकी
ये कह रहे बाबा अभी।
अरे भाई
बाकी नहीं है, कह रहा अपने
यहाँ कहा यार,
अपने यहाँ कह रहे। तो अब मतलब कि ऐसी कई जगह होती हैं, क्लिनिक बने हुए होते हैं जहां लिखा हुआ होता है जेंट्स आर नॉट अलाउड, कहीं लिखा होता है लेडीज आर नॉट अलाउड। तो अभी भी है ऐसा, तो ऐसा रेस्टोरेंट भी खुला था जहां सिर्फ लिखा हुआ था कि ओनली फॉर जेंट्स, यानी कि औरतें यहां खाने के लिए ना आए।
तो ज्यादा चलती होगी होटल।
तो अब ये कि अगर देखें, आपने मशवरा दिया है माशाल्लाह।
बहुत हेवी डोज है आई है
जी,
और डॉक्टर इस डोज को कबूल नहीं करेगा। मेरे तो बचने का तरीका बताया गया, आप बोलो कि हम औरतों को चेक भी करें, इलाज भी करें और बच भी जाए, तो ये है दुश्वार बहुत है।
आपने कौन सा हुक्म शरीयत बयान किया, आपने मशवरा दिया ना।
शरण तो गुंजाइश है, लेकिन ये कि मैंने अर्ज किया कि आप अपने ऊपर गौर करो, क्या आप बच जाते हो बदनिगाही से। जब वो जवान औरत आई है और आपके सामने बैठी है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है या वो सर दुख रहा है, उसको आपके पास आई हुई है, तो अब क्या आप बच जाओगे। इलाज तो जायज है आपका करना, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आप बच जाओगे। निगाह की हिफाजत कर लोगे, जब आप इसको हाथ लगाओगे तो करंट नहीं लगेगा आपको, ये आपको गौर करना है। फ्यूज उड़ा हुआ है आपका तो फिर ठीक है, फ्यूज तो 100 साल के बूढ़े का भी नहीं उड़ता होगा। तो एक जवान डॉक्टर जवान मरीजा को चेक करे, तो शरीयत ने इजाजत दी, वो कुयूदात के साथ ही दिए ना, तो वो कुयूदात कहां से जवान डॉक्टर या उधेड़ उम्र का डॉक्टर बल्कि बूढ़ा डॉक्टर भी उसको निभा सकेगा।
सल्लु अला हबीब
अल्लाह तआला अला मुहम्मद
خوف خدا و عشق نبی